ஓம் ஓம் ஓம். ஆதிகுரு பகவான் சங்கராச்சாரியஜி துவாரா விரச்சித் சிவானந்த லஹரி நாமக ஸ்தோத்ர கே ஆதார் பர் பக்தி ஔர் பாவ சே ஓதப்ரோத குச் தத்துவ பர் விசார் கர் ரஹே ஹேன். அபியாஸ் கே லியே 42வாஸ் ஸ்லோக். காம்பீரியம் பரிகா பதம் கனத்ருதிஹி ப்ராகார்ய உத்யத குணாஸ் தோமஸ்சாப்த பலம் கனேந்திரிய வச்சயோ த்வாராணி தேஹே ஸ்திதஹ வித்யா வஸ்து ஸம்ருத்தி ரித்ய கிலசா மாக்ரி சமேதே சதா துர்காதி பிரிய தேவ மாமக மனோ துர்கே நிவாசம் குரு மா கச்சத்வம் இதஸ்ததோ கிரிசபோ மய்யேவ வாசம் குரு ஸ்வாமின்னாதி கிராத மாமக மன காந்தார சீமாந்தரே வர்த்தந்தே பஹுசோ மிருகா மதஜுஷோ மாத்ஸரிய மோஹாதயாஸ் தான் ஹத்வா மிருகயா வினோத ருச்சிரா ருச்சிதா லாபம் ச சம்ப்ராப்ஸ்யசி. கரலக்ன மிருக கரீந்திர பங்கோ கனசார்துலா விகண்டனோஸ்து ஜந்து கிரிசோ விசதா கிருதிஷ்ச சேத குஹரே பஞ்சமுகோஸ்தி மே குதோபி சந்தஸ் சாக்ஷி சிகான்விதை துஜவரை சம்சேவிதே சாஸ்வதே சௌக்யாபாத் தினிக்கேதேதினி சுதா சாரை பலைர் தீபிதே சேதா பக்ஷிஷிகா மணே தியஜபிருதா சஞ்சாரமன்னைரலம் நித்யம் சங்கர பாத பத்மயுகலி நீடே விஹாரம் குரு. கம்பீரியம் பரிகா பதம் கனத்ருதி. கம்பீரியம் பரிகா பதம் கனத்ருதி ப்ராகார்ய உத்தத குணாஸ் தோமச்சாப்த பலம் கணேந்திரிய சயோ த்வாராணி தேஹே ஸ்திதஹ வித்யா வஸ்து ஸம்ருத்தி ரித்ய கிலசா மாக்ரி சமேதே சதா துர்காதி பிரிய தேவ மாமக மனோ துர்கே நிவாசம் குரு. பகவான் சிவ கே லியே பிரார்த்தனா கர்த்தே ஹேன். ஹே துர்கா துர்காதி பிரிய தேவ. பகவான் சிவ கா நாம் ஹே தேவ, மகாதேவ. தேவ சப்த கா அர்த்த கியா ஹே அன்யைஹி சாதனைஹி அனபேக்ஷ்ய ஸ்வயமேவ தீப்யதே இதி தேவ. किसी अन्य की साधनों की अपेक्षा किए बिना जो स्वयं प्रकाशित होवे उसको देव कहते हैं. हम जब दिया जलाते हैं घी का या तेल का जलाते हैं, उसके बाद वो दीप्त होता है, लेकिन उसके लिए अनेक सामग्री की आवश्यकता पड़ती है, अनेक साधनों की आवश्यकता पड़ती है. मिट्टी के दीवट चाहिए, रुई का बाती चाहिए, तिल का तेल चाहिए, और इसके साथ साथ माचिस और अग्नि का संयोग चाहिए। ये सब सामग्री हो तो तब जाकर वह दिया दीप्त होगा, जलेगी, तब चारों तरफ रोशनी फैलाएगी, अंधकार को नष्ट करने में समर्थ हो। लेकिन भगवान के बारे में ये कहा है कि साधना अनपेक्ष, अन्य साधने अनपेक्ष, अन्य साधनों की अपेक्षा रखे बिना, न तो दीवे की जरूरत है, न बाती की, न तेल की, न अग्नि संयोग की, न माचिस की, वह हमेशा दीप्त होता है, जलता रहता है। जलता रहता है का मतलब है कि वह किसी वस्तु को नुकसान नहीं करता। जैसे दिया जलता है, वह तो बहुत चीजों को नाश करता हुआ जलता है, तेल को नाश करता हुआ जलता है, तेल को क्षय करता हुआ जलता है, बाती को क्षय करता हुआ जलता है, ईंधन को क्षय करता हुआ जलेगा वो। एक तो जिसकी अपेक्षा से वो जल रहा है उसी को ही क्षय करता रहेगा, लेकिन परमात्मा की ये विशेषता है, वह किसी की अपेक्षा रखे बिना वह जल रहा है और किसी को क्षय भी नहीं करता है। रही बात अंधकार को क्षय करने की बात, वो तो एक साधारण दीवा भी तो अंधकार का ही क्षय करता है, तो भगवान शिव में क्या अंतर रह गया? तो बोले एक दिया जो है वो सीमित अंधकार को दूर करता है, साधन निरपेक्ष जो दिया है यानी दीप्तता है, प्रकाश है वह शिव, वह तो मूल अविद्या को ही नष्ट कर देते हैं। तो इसीलिए शिव अर्थात ज्ञान, ज्ञान तो मूल अविद्या को नाश करने वाला है, अज्ञान को नाश करने वाला है, तो उसका क्षय भले हो जाए लेकिन और किसी का क्षय नहीं होता, इसलिए यहां देव कहा। और इसी को भगवान श्री कृष्ण ने गीता में ये कहा कि उसी के प्रकाश से ये सब प्रकाशित होते हैं। यदा दित्यगतम तेजो जगत भाषयते किलम यच्चंद्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धिमामकम। हे अर्जुन, तो सूर्य में जो प्रकाश देख रहा है ना, सूर्य का यदि स्वरूप पर चिंतन कर, स्वरूप पर चिंतन करो तो सूर्य में प्रकाश करने की क्षमता है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि सूर्य भी भौतिक है। भौतिक है का मतलब है कि वह अधिदैव है, पंच तन्मात्राओं से जैसे ज्ञान इंद्रियां आदि उत्पन्न हुए, अंतकरण आदि उत्पन्न हुए, उसी पंच तन्मात्रा के सत्व गुणों से ये देवता आदि उत्पन्न हुए हैं, वह प्राकृत है ये सूर्य मंडल। ध्यान देना, सूर्य मंडल क्या है? प्राकृत है। जैसे ये फूल माला प्राकृत है वैसे सूर्य मंडल भी प्राकृत है। फिर महाराज, इस फूल माला में और सूर्य में क्या अंतर है? अंतर यह है कि फूल ये तमोगुण का कार्य रूप पृथ्वी और उसका कार्य रूप है, और सूर्य जो है सत्वगुण का कार्य रूप है, और सूर्य में यह क्षमता है कि अन्य प्रकाश को उस अपने में धारण करके खुद भी प्रकाशित होवे और अन्य को भी प्रकाशित करे, वो क्षमता सूर्य में है। जैसे एक दर्पण में वो क्षमता है, सूर्य एक गीता के भाषा में विचार करो तो सूर्य एक दर्पण से बढ़कर कुछ नहीं है। हाँ, दर्पण से बढ़कर कुछ नहीं है मतलब क्या? जब कभी दिन के समय में हाथ में मिरर लेकर बाहर घूमो और सूर्य के तरफ थोड़ा सा एंगल बनाकर और उसमें जो सूर्य का प्रतिबिंब पड़ता है आईना में, मिरर में, दर्पण में, उसमें से एक फोकस निकलता है सूर्य में, सूर्य का दर्पण में जब रिफ्लेक्शन पड़ता है उसमें से एक रोशनी का फोकस निकलता है। और वो किसी अंधकार कमरे में डालोगे तो वहां उजाला रोशनी हो जाएगी। तो ठीक सूर्य यही काम कर, जैसे वो मिरर काम कर रहा है, सूर्य के प्रकाश को लेकर कमरे को प्रकाशित कर रहा है, अन्यथा मिरर में प्रकाश करने की क्षमता नहीं है। इसी तरह सूर्य में स्वयं स्वरूपता प्रकाश करने की क्षमता नहीं है मूल रूप में, फिर इसमें ये प्रकाश सारे पृथ्वी को प्रकाशित करने की क्षमता आई कहां से? तो भगवान ने ईमानदारी से कह दिया, मेरा प्रकाश ले रहा है वो, मैं स्वयं प्रकाश रूप, मेरा जो प्रकाश है मैं पहले प्रकाशित होता हूं, मेरे प्रकाश को सूर्य अपने में ग्रहण करता है और वहां से फिर फेंकता है, तो पृथ्वी में प्रकाश सब चारों तरफ व्याप्त हो जाता है और पृथ्वी के सारे पदार्थ प्रकाशित होने लगते हैं। यदादित्य गतम तेजो जगत भासयते अखिलम, अखिलम जगत भासयते यत तेजा तत् मामकम विद्धि, तुम उस तेज को मेरा तेज मानो। यत चंद्रमसी, और ये चंद्रमा का भी काम वही है, अन्यथा चंद्रमा का जब ग्रहण लगता है ना पता चलता है कि चंद्रमा क्यों प्रकाश नहीं करता है, परमात्मा की जो प्रकाश है और चंद्रमा के बीच में कोई व्यवधान आ जाता है तो परमात्मा के प्रकाश को चंद्रमा ग्रहण नहीं कर पाता है। तुम वैज्ञानिक कहोगे वहां परमात्मा क्या है? सूर्य का प्रकाश है कहोगे। अरे वे सूर्य में आया जो प्रकाश है वही, सूर्य में भी तो ग्रहण लगता है कि नहीं, और सूर्य में ग्रहण किसका प्रकाश को अवरुद्ध करता है पृथ्वी, बोलो? सूर्य में जो ग्रहण लगता है किसका प्रकाश को पृथ्वी अवरुद्ध करती है? चंद्रमा के, चंद्रमा। अच्छा, पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा, माने सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आवे ये नियम है, तो रोशनी किसका अवरुद्ध किया चंद्रमा ने? प्रश्न ये है, सूर्य में ग्रहण लगे और सूर्य की रोशनी अवरुद्ध करे? यहां बत्ती जल रही है, यहां सूर्य है और बीच में चंद्रमा आ गया, रोशनी तो इधर होना चाहिए तब ना सूर्य में ग्रहण लगेगा। कहां चंद्रमा और कहां सूर्य? सूर्य सूर्य की रोशनी को चंद्रमा कैसे अवरुद्ध करे? चंद्रमा में, चंद्रमा की छाया सूर्य में पड़ गया ना, किसका प्रकाश था पहले है? जैसे पृथ्वी बीच में आ गया तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी बीच में आने से चंद्रमा में वो रोशनी अवरुद्ध, यही ना चंद्र ग्रहण की प्रक्रिया, यही है ना है? अब ठीक इसी तरह सूर्य ग्रहण की प्रक्रिया को देख लो, तो वैज्ञानिक का मानना क्या है? पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य में ग्रहण लगता है। अरे किसका प्रकाश अवरुद्ध हुआ? सूर्य के प्रकाश अवरुद्ध होगा चंद्रमा से, अवर चंद्रमा आकर पर सूर्य के प्रकाश को थोड़ी अवरुद्ध, चंद्रमा आ गया है ना, या तो फिर पृथ्वी की छाया, पृथ्वी की छाया सूर्य में पड़ा चंद्रमा के रोशन को, रोशनी को रोका, या पृथ्वी की रोशनी को रोका। तुम दिया यहां जल रहा हो और उसके पीछे तुम हाथ रख दोगे, उसके आगे रोशनी नहीं जाएगी, अंधकार होगा। इसी तरह यहां पृथ्वी देदीप्यमान है और उसके बीच में चंद्रमा आ गया और चंद्रमा का प्रकाश सूर्य में नहीं गया तो अवरुद्ध हो गया। अब यह यूं मान लो तुम कि सूर्य के प्रकाश को अपने आग बंद करके सूर्य में अंधकार कर दिया, कर सकते हो कि नहीं है? सूर्य में जो प्रकाश है जल रही है देदीप्यमान प्रकाश है, उसको, उस प्रकाश को अवरुद्ध करने का उपाय क्या है? तुम अपने आग बंद कर दो तो सूर्य में कालिमा छाएगा कि नहीं? क्या यही कहना चाह रहे हो? पृथ्वी के छाया, चंद्रमा के छाया सूर्य में पड़कर सूर्य का प्रकाश अवरुद्ध हुआ है कि बीच में चंद्रमा आ जाने के कारण सूर्य का प्रकाश अवरुद्ध हुआ, वैज्ञानिक यही कहेंगे ना, बीच में चंद्रमा आया, तो इसका मतलब यही सेम बीच में पृथ्वी आया है? तो फिर चंद्रमा का प्रकाश अवरुद्ध हुआ, यही मानना पड़ेगा ना है? बीच में पृथ्वी आने से चंद्रमा का प्रकाश अवरुद्ध, तो इसका मतलब वो छाया नहीं मान सकते उसको, पृथ्वी की छाया नहीं मान सकते हो चंद्र ग्रहण में, और सूर्य ग्रहण में चंद्रमा की छाया नहीं मान सकते हो, व्यवधान मान सकते हो। तब तुम व्यवधान मानोगे तब तो ये व्यवस्था होगी, छाया मानोगे तो फिर ये व्यवस्था नहीं हो सकती है। चंद्रमा में तो विश्वास भी कर लेंगे, चंद्र ग्रहण में तो तुम कह दोगे कि सूर्य का प्रकाश चंद्रमा में पड़कर चंद्रमा भी प्रकाशित हो रहा था, बीच में पृथ्वी आ गया तो पृथ्वी की छाया सूर्य का प्रकाश चंद्रमा में जा नहीं पाया तो काला धब्बा देख लिया दिखाई पड़ा, ये तो विश्वास करने लायक मान सकते हैं। लेकिन सूर्य में जो ग्रहण दिखा उसकी प्रक्रिया क्या है? अब तुम कहोगे कि वहां तो बीच में आ गया इसीलिए नहीं दिखाई पड़ रहा है, तो बीच में आने का काम फिर यहां पर क्यों नहीं मानते हो? यहां पर भी बीच में आ गया ये मान लो, छाया क्यों मानते हो? फिर व्यवधान आ गया मानो, छाया न मानो। बात समझ गए कि नहीं? क्लियर हो गया ये बात? तो इसी प्रकार से देव शब्द का अर्थ होता है स्वयमेव दीप्यते इति देवः। कैसे हैं वो देव? दुर्गाति प्रिया, भगवान शिव को दुर्गा अति प्रिय लगता है, दुर्गा प्लस अति प्रिय, दुर्गा अति प्रिय। दुर्गा शब्द का अर्थ क्या है था मालूम है? जहां पहुंचना बहुत ही कठिन हो उसको क्या बोलते हैं? दुर्गा। दुखे न गमयितुम शक्यते इति दुर्गा। अब कैलाश कोई आसान से जा सकते हो तुम, तो कैलाश का नाम क्या हुआ? दुर्गा। अब वहां हमेशा रहने वाले होने के कारण उसको कभी भी नहीं छोड़ते हैं, तो क्या हुआ? दुर्गा अति प्रिय हुआ कि नहीं? अब केदार कोई आसान है वहां जाना है? केदार जाना कोई आसान है? तुम्हारे बाबुलनाथ गए जैसा है केदार? लिफ्ट में चढ़े और ऊपर पहुंच गए? तो जाना बहुत कठिन है, इसीलिए उसका नाम केदारनाथ का नाम क्या हुआ? दुर्गा। और वहीं उसको अति प्रिय मान के, वो स्थान को उनको बहुत प्रिय है, इसीलिए क्या हुआ उनका नाम? दुर्गा अति प्रिय। और ये केदार और कैलाश तो बहुत पीछे की बात है, भगवान शिव ने ये तो फार्म हाउस बनाया है, कभी कभी वैकेशन हो तो वहां जाकर रहे। और शिव का हमेशा रहने का घर तो क्या है? मसान, सुनसान। और वहां बच्चे जाना नहीं चाहते हैं, स्त्री बाल कमजोर हृदय वाले, जाना उनके लिए कठिन है, इसलिए वो भी दुर्गा है, सभी लोग नहीं जाते। ये तो सामान्य आज की परिभाषा में ये नहीं चलता। अमरनाथ, अमरनाथ की गुफा में तो भगवान शिव सारा पृथ्वी प्रलय हो जाए तो भी वहीं रहते हैं, पार्वती के साथ ही अमरनाथ की गुफा में रहते हैं। क्या वो सुगम है क्या है? वो सुगम है अमरनाथ? वो भी दुर्गा है कि नहीं? शिव जहां जहां रहते हैं वो दुर्गा में रहते हैं, इसलिए भगवान शिव का नाम क्या हुआ? दुर्गा अति प्रिय देव। ये संबोधन है, हे देवा तुमको दुर्गा अति प्रिय है, कठिन यात्रा जहां होती है वो, जहां सभी लोग नहीं पहुंच सकते, ये कठिन कठिन जगह पर तुम हमेशा रहते हो, आनंद से रहते हो, इसलिए तुम्हारा नाम क्या हुआ? दुर्गा अति प्रिय देव। दुर्ग शब्द का दूसरा अर्थ है किला। संस्कृत भाषा में राजाओं की जो किला है उसको भी क्या कहते हैं? दुर्ग कहते हैं। तो हे शिवा, आपको दुर्गा ही अच्छा लगता हो तो एक दुर्गा हमने भी बना रखा है। आपको किला अच्छा लगता है, कल राजा की बात चल रही थी ना, राजा वतन से तो मानस राज, मानस रूपी सिंहासन में आप विराजमान करोगे तो सब दुर्भिक्ष चला जाएगा, सुशासन होगी है, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो राजा के उपमा जब पहले श्लोक में दिया तो राजा तो हमेशा किले में रहेगा, दुर्ग में रहेगा। एक दुर्ग मेरे पास भी है, वो दुर्ग है मानस दुर्ग। गांभीर्यम परिखा पदम, दुर्ग का नियम है परिखा, जहां राजमहल होता है उसके चारों तरफ बहुत गहरी खाई खोदी जाती है और उसमें पानी भर दिया जाता है ताकि शत्रु पक्ष वह आसान से उस खाई को पार करके किले तक पहुंच न सके। और उस किले की रक्षा करने वाले सेना मोटर बोट को चारों तरफ घूमते रहते हैं उसी में, तो शत्रु एकाएक आक्रमण करने वाले थल सैनिक लोग है ना, थल सैनिक लोग वो दुर्ग में इधर राज्य में शहरों की कब्जा भले कर ले, वहां पर आक्रमण भले कर, राजा सुरक्षित रहेगा। राष्ट्र में आक्रमण करे तो भी राजा सुरक्षित रहेगा। और ये नियम है कि राजा यदि सुरक्षित है, राजा पर जय विजय प्राप्त नहीं करेंगे तब तक राष्ट्र पर विजय प्राप्त हुआ ये नहीं माना जाता। तो राजा पर विजय प्राप्त करने के लिए तो ये दुर्ग ये सब भेदन करते हुए जाना पड़ेगा ना। तो राजमहल के चारों तरफ बड़ी खाई खोदी जाती है, उसका नाम कर दिया यहां परिखा पदम। घन धृति ही प्राकार उद्यत गुण, प्राकार माने बड़े बड़े बहुत सुंदर महल अट्टालिका है, उसको प्राकार बोलते हैं। उस दुर्ग के बीच में वो प्राकार है, किले के बीच में आपके रहने के लिए राजमहल विद्यमान है। उद्यत गुण और वह सर्वगुण संपन्न है, हर चीज वहां पर है। तोमह और प्रकाश बहुत अच्छा है। चाप्त बलम घन इंद्रिय चयो, और उसकी रक्षा करने वाले बहुत सी सेनाएं भी हमने तैयार कर दी है। आप्त बल माने विश्वसनीय सेना बल, आप्त बल आप्त का अर्थ होता है यथार्थ वक्ता, यानी विश्वसनीय बात करे उसको कहते हैं आप्त। अब विश्वसनीय बात करे तो वो आप्त नहीं होगा, वो तुम्हारे हमारे जैसे हैं, इसलिए तुम हम जो बोलेंगे वो विश्वसनीय नहीं होगा है, हमारा स्वार्थ उसमें छुपा हो सकता है, लेकिन आप्त पुरुष सत्य पुरुष यथार्थ वक्ता व्यक्ति उनके बातों पर शत्रु भी विश्वास करते हैं, शत्रु भी उनकी बातों पर विश्वास करते हैं। इसका मतलब हुआ आप्त का अर्थ विश्वसनीय। ऐसी सेना हमने तैयार किया रखा है कि आपके लिए पूरे विश्वसनीय, जरा भी धोखा नहीं देंगे वो। कौन है सेना महाराज? घनेन्द्रिया, इंद्रिय घना, घन शब्द का अर्थ होता है समूह। तो क्या इंद्रिय समूह वो आप्त सेना है, वो विश्वसनीय सेना फौज है। मन रूपी जो किला है और वहां प्रकार उद्यत गुण सर्वगुण संपन्न मन है और वहां प्रकाश है, बुद्धि का प्रकाश है मन के पास, बुद्धि का प्रकाश है ही है परिखा। गांभीर्यम परिखा पदम घन धृति प्राकार उद्यत गुण स्तोमश्चाप्त बलम घनेन्द्रिय चयो द्वाराणि देह स्थितः। अब तुम कहोगे कि वो किले में चारों तरफ से हवा न आती हो, बोले ऐसा किला है कि नौ द्वार है पूरा, वहां जाकर बैठोगे तो पूरा दुनिया का नजारा भी देख सकते हो, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों तरफ वह द्वार फैले हुए हैं। आपको जिधर का दृश्य देखना हो देख लो भाई, है? पूर्व का देखना हो तो देख लेना, उत्तर का देखना हो तो देख लेना, दक्षिण का देखना हो तो देख लेना। लेकिन दक्षिण का देखने के लिए जाना नहीं भाई, दक्षिण का द्वार कौन सा द्वार है पता है? यम द्वार। अब यमराज कौन से इंद्रिय के अधिपति हैं तुम लोगों को पता है? उसने उपस्थ कहा, समथिंग क्या होता है समथिंग? उपस्थ और गुदा एक ही है, बच्चा पैदा कर लोगे गुदा से, समथिंग है, इसका मतलब क्या होता है? गुदा तो गुदा, उपस्थ तो उपस्थ, उपस्थ में ब्रह्मा जी रहते हैं और गुदा में यमराज रहता है। तो दक्षिण का द्वार कौन हुआ? दक्षिण दिशा यमराज का, और यमराज कहां रहते हैं? दक्षिण दिशा में रहते हैं, और द्वार गुदा इंद्रिय, और दक्षिण का दरवाजा है, वहां जाने की चेष्टा नहीं करना भाई। वहां जाओगे तो बांद्रे के खाड़ी में पहुंच जाओगे सीधे है, बांद्रे के खाड़ी में पहुंच जाओगे, वह द्वार तो बांद्रे के खाड़ी में पहुंच जाएगा। मलद द्वार है, दुर्गंध से भरा हुआ है, फिर भी कभी कभी यदि इच्छा हो तो जा सकते हो महाराज। लेकिन बाकी दरवाजे तो बड़े अच्छे, क्या दृश्य, क्या बढ़िया आनंददायी है। कहीं बढ़िया जाही जूही की सुगंध लेना हो तो नासिक चले जाना। नासिक माने ग्राण इंद्रिय, नाक। जाही जूही का सुगंध लेना हो तो नासिक चले जाना, संगीत का आनंद लेना हो तो कानपुर चले जाना। कहां है कानपुर? क्या सुंदर, क्या सुंदर है, देख लो। तुमको संगीत का कानपुर यही है, नासिक यही है, ले जी प्रेमपुरी, प्रेमपुरी की रसपुरी है। कभी रसपुरी का आनंद लेना हो तो कहां जाओ? प्रेमपुरी रसपुरी जुबा में जाओ यार, क्या सुंदर है भाई। स्तोमच्चा तबलम गणेन्द्रिय चयो द्वाराणी देह स्थिता। इस शरीर रूपी महल में, राज किले में, और इतना सुंदर राज महल है, वहां परिघा भी है, गांभीर्यम, और इंद्रिय आप्तबलम च गणेन्द्रियो द्वाराणि देह स्थित, और वहां सब कुछ संपन्नता है। विद्या वस्तु समृद्धि इति अखिल सामग्री समेते सदा। और जहां विद्या का बल है, जहां विद्या है वहां सभी चीज आ जाता है। विद्या है तो वहां सभी चीज आता है। विद्या धनम सर्वधनम प्रदानम, हम लोग पढ़ते थे विद्या के बारे में, निबंध लिखना पड़ता था, विद्या का महत्व लिखो। स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। विद्वान देखो, जिसके पास विद्या है, स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। यस्यास्ति वित्तम, तो वित्त तो चोरी करके भी कोई और ले जाएगा, लेकिन विद्या धन कोई चोरी नहीं कर सकता है। न चौर्यहार्यम न तो भ्रातृवाज्यम, विद्या धनम सर्वधनम प्रदानम। मैं देख लो, विद्या का महत्व यह है, उस विद्या धन की कोई चोरी भी नहीं करता। न भ्रातृवाज्यम, भाइयों में बंटवारा करने की जरूरत नहीं पड़ती है, संपत्ति हो, भाई कहे कि हमको बंटवारा करो, तो बोले बेटा मेरे पास कुछ विद्या है, उत्ते तू ले जा विद्या, आधा तू ले जा। बोले हमको तेरी भी बुद्धि नहीं चाहिए, हमको तो पैसा चाहिए। तो पैसा धन होगा तो भाई भी बंटवारा करेंगे, और पैसा जो धन है और संपत्ति का और जो धन है वो तो चौराहार्य भ्रातृभाज्यम, भाई बंटवारा करने के लिए तत्पर हो जाएगा तुरंत। और राजकारी सबसे पहले आंख तो उसी का ही पड़ता है, राज्य का, राजा का। आजकल जिसको इनकम टैक्स बोलते हो ना, तुम्हारी यदि विद्या धन होती तो इनकम टैक्स पड़ता है ना? भौतिक धन में इनकम टैक्स पड़ता है, विद्या धन में इनकम टैक्स पड़ता है। तूने अनैतिक दृष्टि से तुमने ये विद्या अर्जित की है, इस विद्या में इतना प्रतिशत टैक्स लगेगा, आयकर जमा करो। कहीं किसी को नोटिस भेजा है राज्य ने? बोलो, तुमने ज्यादा पढ़ ली है, आवश्यकता से ज्यादा पढ़ ली, इसलिए उस विद्या का इतना प्रतिशत टैक्स भरो। बोलो, राजा टैक्स भरने के लिए कहेगा? विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम, आग से जलेगा नहीं, भाई बंधु बंटवारा करने के लिए नहीं आएंगे, चोर चोरी नहीं करेगा, राजा के दृष्टि टैक्स के लिए नहीं पड़ेगा। क्या सुंदर धन है वो विद्याधन। विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम, विद्या वस्तु समृद्धि, और विद्यारूपी समृद्धि जहां है तो सब समृद्धि है। इसलिए कहा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते, स्वदेशे पूज्यते राजा। राजा तो अपने देश में ही मान्य होता है, दूसरे के देश में कौन गिनेगा उसको? लेकिन विद्वान होगा तो सर्वत्र पूज्यते, वही समृद्धि है। अखिल सामग्री समेते सदा, वो सब कुछ हमेशा रहने वाला है। इसलिए ऐसा एक किला है, ऐसा राजमहल है, ऐसा एक दुर्ग है मेरे पास है? और तुमको दुर्ग बहुत अच्छा लगता है, इसलिए तुम दुर्गाति प्रिय देव मामक मनो दुर्गे निवासम करो, मेरे मन रूपी दुर्ग में आप निवास करो। हमको विषयों में जाना बड़ा आसान है, इंद्रियों के पीछे लगकर विषयों में जाना बड़ा आसान है, हम जाते ही हैं, उसके लिए कोई कठिनाई नहीं पड़ती है। लेकिन विषय से वापस फिर मन में जाना पड़े है, विषय से वापस आकर इंद्रियों के सहायता छोड़कर पूरी तरह मन में एकाग्रत, एकदम एकाग्रित होना पड़े तो कठिन है कि नहीं है? तुम हमारे लिए कठिन है कि नहीं एकाग्रता? तो ये एकाग्रता इंद्रियों से सिद्ध होता है कि मन से? एकाग्रता सिद्ध तो मन से करना है, इसलिए मन की एकाग्रता करना बहुत कठिन होने के कारण मन को क्या कह दिया? दुर्ग। मामक मन दुर्गे निवासम कुरु, हे शिवा तुम्हें दुर्ग में रहने की आदत है, वही तुमको अच्छा लगता है, मेरा ये मन रूपी दुर्ग खाली पड़ा है इस समय, तुम्हारे न रहने के चलते और विषयों काम क्रोध आदियों ने निवास किया है, और यदि आप आकर उस मन रूपी दुर्ग में रहोगे तो आपके आते ही काम क्रोध आदि अपने आप भाग जाएंगे हाँ? और सारे जीवन में समृद्धि भी आ जाएगी। दूसरी बात, दुर्गा अति प्रिय, तो दुर्गा माने पार्वती, तीसरा अर्थ हो गया दुर्गा अति प्रिय। दुर्गा माने पार्वती, पार्वती आपके अति प्रिय है, सारी दुनिया को छोड़ सकते हो आप हैं, कपड़े भी छोड़कर नंगे घूम सकते हो, भोजन भी छोड़कर बैठ सकते हो, वस्त्र भी छोड़ सकते हो, सब कुछ छोड़ सकते हो, दुनिया तीनों लोग छोड़ सकते हो, लेकिन दुर्गा को नहीं छोड़ सकते, इसलिए तुम दुर्गा थी। जिंदे दुर्गा को, क्या मरे हुए दुर्गा को तो नहीं छोड़ सकते हो? कितनी प्यार है तुमको दुर्गा से है? देख लो, सती जब मरी तो मरने पर हम लोग तो क्या किया है? हमारी पत्नी मरी तो हम लोगों ने क्या किया? बोलो, चंदनवाड़ी ले गए कि नहीं है? और शिवजी ने क्या किया? हा, क्या प्रिय, कंधे में डालकर आ लेके चल पड़े, कितना प्रियता। आत्मा नहीं है फिर भी उसको छाती से लगा रहे हैं, कंधे में लेकर चल पड़े, संसार को छोड़ दिया, सब भूल गए, विचरण कर रहे हैं भगवान शिव, तो दुर्गा अति प्रिय, इतना प्रिय है कि उन्होंने दुर्गा को यानी सती को, पार्वती को, देवी को आधा अंग ही दे दिया। तुम लोगों ने दिया है, खाली नाम रख दिया अर्धांगिनी, और देने में कुछ नहीं दिया है। नाम क्या रखा है, नाम क्या रखा है, अपनी पत्नी का नाम क्या रखा है आप लोगों ने, अर्धांगिनी। और कि दिया क्या, उंगली तक नहीं दी है उसको, आधा अंग की बात छोड़ दो, उंगली तक नहीं दिया है। अब भगवान शिव ने तो सचमुच आधा अंग ही दे दिया, ले तभी जाकर अर्धनारीश्वर हो गए भगवान शिव। कितना प्रियता है, आहा दुर्गा, भगवान शिव को दुर्गा यति प्रिय है, देवी इतनी प्रिय है। फिर भी भगवान शिव की पूजा नहीं करते, आराधना नहीं करते, खाली कृष्ण कृष्ण करते हुए उसे के पीछे दौड़ते हैं। सर्वस्व अपना आधा अंग दे दिया शिव की भक्ति नहीं करके, जो छुप छुप के लुक लुक के मक्खन खाता है और नाच नचाता है और भाग जाता है, इसके पीछे फिर दौड़ते रहते है। भगवान भागे नहीं, भागे शिव तो नहीं भागे ना, कृष्ण भाग गए कि नहीं है? जंगल में, घोर जंगल में रात्रि के समय में भाग गए सब अवलाओं को एकले छोड़कर, एक को लेके गए उसको भी बीच में ले जाकर छोड़ दिया। ले बिचारी अब रोने लगे है, अब रो रो कर गा रहे, रो रो दुस्वरम कृष्ण दर्शन लालसा। वेणु गीत सुनो, गोपी गीत सुनो, जयति ते अधिकम जन्मना, रोते हुए गा रही है, खोज रहे हैं बिचारे है। पेड़ से पूछते हैं, तुमने देखा हमारे दैत्य को, हमसे क्यों पूछते हो, हम तो जड़ हैं। बोले नहीं महाराज, तुम जड़ नहीं हो, तुम तो चैतन्य हो। हाँ, और तुम चैतन्य ऐसे हो कि खड़े हो, ऊंचे हो, एकदम ऊंचे हो, और भगवान के छवि को देखते देखते तुम्हारी ऐसी समाधि लग गई है कि तुम्हारे में हलचल ही नहीं है, जड़ जैसे भ्रांति दुनिया को हो रही है, तुम तो उसके छवि को देखकर समाधि में बैठे हो, बताओ किधर है, क्योंकि तुम सबसे ऊंचे हो ना, देखो किधर गए हैं, इधर गए कि उधर गए हैं, अब तुमसे नहीं पूछे तो हम किससे पूछेंगे है? तो रोने लग गए, विलाप करने लग गए, और भगवान शिव ने तो आधा अंग ही दे दिया भाई, इसीलिए दुर्गा अति प्रिय। तीन अर्थ हो गए भाई, है ना, दुर्गा अति प्रिय, मन दुर्गा, पहाड़ आदि दुर्गा, दुर्गा अति प्रिय, दुर्गा प्रिय। मामक मनो दुर्गे निवासम कुरु, आप सुरक्षित रहोगे क्योंकि मेरे सेना इतनी बलवान है कि कोई भी तुम्हारे को आक्रमण नहीं कर पाएंगे। यही बात यहां कह रहे हैं। दूसरी बात, अब भगवान शिव को फिर दूसरे शब्द से संबोधन कर रहे हैं। मा गच्छ त्वम इतस्ततो गिरिशभो मय्येव वासं कुरु, स्वामिन्नादि किरात मामक मना कांतार सीमांतरे, वर्तन्ते बहुशो मृगा मदजुषो मात्सर्य मोहा दया, तान हत्वा मृगया विनोद रुचिरता लाभम च संप्राप्स्यति। हे विभो, हे गिरिशा, मा गच्छ त्वम इतस्ततो, हे गिरिशा तुम अब इधर उधर मत भटको, जंगलों में मत भटको भाई। शंकराचार्य जी भगवान शिव के उस स्वरूप का स्मरण करते हुए यहां कह रहे हैं, स्वामिन आदि किरात, भगवान शिव तो किरात वेश धारण करके जंगलों में शिकार खेलते थे, अर्जुन की परीक्षा लेने के लिए भगवान शिव किरात का वेश धारण करके जंगल में शिकार खेलते हुए भ्रमण करते थे। अर्जुन पाशुपत अस्त्र प्राप्त करने के लिए घोर जंगल में जाकर तपस्या किया अर्जुन ने, और गांडीव धनुष प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की। तो भगवान शिव ने विचार किया कि ये अस्त्र के लिए तपस्या तो कर रहा है, लेकिन ये अस्त्र शस्त्र चलाने में कुशल है कि नहीं। इसको जो अस्त्र शस्त्र देंगे उससे इसका अपना उपकार करेगा कि अपकार करेगा, पहले परीक्षा तो ले। तो जिस जंगल में अर्जुन तपस्या कर रहा था, भगवान शिव से अस्त्र प्राप्ति के लिए, उसी जंगल में भगवान शिव एक भील किरात का रूप धारण कर लिया और धनुष बाण लेकर चल पड़े जंगल में। तो देखो तुम लोग अन्यथा नहीं ले लेना हो। तो एक जो सुअर था, सुअर भगवान शिव की लीला तो है ना, गुजराती में भुंड बोलते हो ना, सुअर बराहा, वह भगवान शिव की लीला थी। अर्जुन को हैरान करने लगा, जहां समाधि में बैठा, ध्यान में बैठा, तपस्या में बैठा है, वह सुअर उसे के चारों तरफ घूमे और अर्जुन को जाकर उसके सिंग मारे, कभी लात मारे, कभी पूंछ मारे, कभी सूंड मारे, उसका मुख मारे, अर्जुन को फिर इस प्रकार से विक्षेप करे और अर्जुन उसकी समाधि टूट जाए, तब टूट जाए, फिर उसको दूर भगावे। तो अब दूर चला गया, फिर आकर बैठे साधना करने, तपस्या करने, फिर वो आ जावे। ये भगवान शिव की लीला थी, उनकी प्रेरणा थी। तो हैरान किया तो अर्जुन को गुस्सा आ गया, ये मेरी साधना को दया करुणा और अहिंसा के बल पर मुझे हैरान कर रहा है, और दया करुणा अहिंसा का दुरुपयोग कोई करना चाहे तो उस समय थोड़ी क्रूरता भी दिखानी चाहिए। अपना अहित होता हो दया के चलते तो वो दया किस काम की भाई, उस करुणा की किस काम की भाई, अपना ही अहित होने जा रहा है। अपना हित करते हुए दूसरों की उपकार करो तो वो दया दया है, आत्मा विनाश करते हुए दूसरे की दया क्या दया है भाई। तो अर्जुन को आ गया गुस्सा, क्षत्रिय तो था। गीता में कहा है ना, तू कहता है अर्जुन मैं युद्ध नहीं करूंगा, भिक्षा मांगे मांग कर खाऊंगा, प्रकृति त्वम नियोक्षसि, तेरी जो प्रकृति है ना अर्जुन, तुझे युद्ध करा के ही छोड़ेगी। अनिच्छन्न पिवार्षणे बलादिवन योजति, तेरी प्रकृति तुझे जबरदस्त जिस चाज को नहीं चाहता है वही काम करा के ही छोड़ेगी बस। तो यही हुआ, अर्जुन तो क्षत्रिय था, आ गया गुस्सा, तुरंत धनुष बाण उठा लिया और उस पशु को, सुअर को उसने तीर चलाई, और उसी समय में भगवान शिव ने भी तीर चला दी, दोनों तीर उस सुअर में जाके लग गए एक ही साथ। ये भगवान शिव की लीला थी, और उसमें तीर लगा था, अपना अपना तीर तो निकालना ही था, भगवान शिव भी अपने तीर लेने के लिए गए, उनका कहा कि खबरदार, ये मेरा, मैंने मारा ये पशु, ये मेरा शिकार है। अर्जुन ने कहा कि नहीं नहीं मैंने मारा है, ये मेरा शिकार है, पहले महीने मारा, भगवान ने कहा पहले महीने मारा। दोनों के बीच में झगड़ा शुरू हो गया, वहां है ये शिकार किसका है, अर्जुन का है कि शिवजी का है, किसने मारा, वहां तो अपनी अस्मिता का प्रश्न आ गया ना। तो भगवान शिव जी कहते पहले मैंने मारा है इसको, मैंने मारा तब जाके तेरा तीर लगा है। अर्जुन ने कहा कि नहीं पहले मैंने मारा है फिर तुम्हारा तीर लगा है, इसलिए ये मेरा है। दोनों के बीच में झगड़ा हुआ, तो भगवान शिव ने कहा कि अरे बेटा ये क्यों विवाद करते हैं, दोनों लड़ाई करते हैं, जो जीतेगा उसी का है, चल है? दोनों लड़ते हैं आपस में, ये जाने दो एक तरफ, दोनों लड़ाई करते हैं, जो जीतेगा ये उसका है, ये शिकार। तो अर्जुन कहां कमजोर था भाई, उठाया धनुष, चल यही सही। तो एक जंगल का मनुष्य भील कुल किरात और मुझे चुनौती देता है उसको क्या पता कि शिव जी है, वो तो किरात का वेश धारण करके ये सब बात कर रहे हैं। अर्जुन के बड़े और अस्मिता है, कहां मैं अर्जुन धनुषधारी, कहां ये जंगल का भील, कहां जंगल का आदिवासी किरात, ये मुझे चैलेंज दे रहा है, चल लड़ाई करते हैं। दोनों के बीच में घमासान युद्ध हो गया। ऐसा युद्ध हुआ कि बस अंत में उसके युद्ध कौशल्यता को देखा भगवान शिव ने, तो बोले ये ठीक है, इसको मैं अस्त्र दूंगा तो इसका उपयोग करेगा, आत्म विनाश भी नहीं करेगा, अधर्मियों को ही मारेगा, स्वधर्मियों को नहीं मारेगा। दुष्टों को यदि हाथ में हथियार पहुंचती है तो वह आतंक मचाने लग जाते हैं, लगाते हैं कि ये नहीं, बोलो। हथियार तो सेना के पास भी है, दुष्ट के पास भी है, सेना कभी आतंक नहीं मचाते और दुष्ट लोग बस आतंक मचा रहे हैं। नहीं, पूर्वांचल में सब आतंक मच रहा है कि नहीं, छत्तीसगढ़ मर गए कितने देख लो, मचा रहे हैं, उनके पास भी हथियार है, करें क्या। तो भगवान को लगा कि ये आतंकवादी तो होगा नहीं है, ये ठीक सदुपयोग करेगा। तो भगवान ने कहा कि बस हो गया, तू जीत गया, चल हो गया, मान लिया कि तू ही जीत गया। तो अर्जुन रुक गया। तो उतने में भगवान शिव ने अपना स्वरूप दिखाया, अर्जुन तो जिसके लिए ये तपस्या कर रहा है, मैं शिव हूं, ये देख ले मेरा स्वरूप, तुझे हथियार चाहिए, ले हथियार, ले जाओ युद्ध करो, धर्म युद्ध करो, अधर्म के विरोध में धर्म युद्ध करो, ये हथियार अमोघ हथियार है, जब तक ये हथियार तुम्हारे हाथ में रहेगा तब तक तुम कभी भी पराजय का मुख देख नहीं पाओगे, और युद्ध करना अधर्म के विरोध में। तो भगवान शिव को उसने, अर्जुन ने कृतज्ञता व्यक्त करते हुए, महाराज ये सारा खटपट करने की क्या जरूरत थी, इतना युद्ध हुआ, तू मैं हो गया, अजानता महिमानम तवेदम मया प्रमादेन, अर्जुन कहता है ना भगवान से, मैंने आपकी महिमा को नहीं जाना, इसलिए मैंने पता नहीं क्या क्या कह दिया आपको, क्षमा करना महाराज। बोले कोई नहीं बेटा, ये सब युद्ध मेरी इच्छा से हुई है, तुम्हारी कौशल्यता को, युद्ध कौशलता को मैं देखना चाहता था, तू मेरे परीक्षा में पास हो गया है, ले जा युद्ध करो। तो वो जो किरात भेष जो है अर्जुन से युद्ध करने का स्वरूप, उस पर शंकराचार्य जी ने स्मरण किया, स्वामिन आदि किराता, आदि किरात माने सृष्टि में किरात जातियों के वो सबसे आदि हैं, आदि किरात हैं वो, उससे पहले किरात कोई थे ही नहीं, उन्हीं के वंशज हैं सब, उन्हीं के अनुयायी हैं किराती, आदिवासी, जंगल के आदिवासी लोग सब भगवान शिव के ही संतति हैं। जंगल को छोड़कर अन्यत्र नहीं जाना, आप किराती हैं इसलिए शिकार खेलने की आपकी आदत पड़ी हुई है, शायद इसीलिए धनुष्बाण उठा लिया और बस जंगलों में भटकते रहे। मा गच्छत्वम इतस्ततो, अब आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं महाराज, गिरिशभो मय्ये वासं कुरु, अब मुझे छोड़कर, मेरे हृदय को छोड़कर आप अब कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। मामक मना कांतारा, कांतारा मने जंगल, मनरूपी जंगल में आप यही रहे, आपको जंगलवासी हो, वनवासी हो, आप किरात हो, इसलिए वनवासी हो, आप बंबई के मलबार हिल में तो रहोगे नहीं हैं? रहोगे, आप वनवासी हैं, वन में रहने का आपको आदत है, तो मेरा मन भी ये अनेक वृत्तियों से भरा हुआ होने के कारण एक एक वृत्ति एक एक पेड़ है, एक एक जंगल की तरह है, आप भटक जाओगे, मेरे मन में ही बैठ जाओ, जितना जंगल चाहिए ले लो जंगल, मनरूपी जंगल। सीमांतरे, मन की सीमा से बाहर नहीं जाना आप, बस बोले मुझे शिकार खेलने की इच्छा हो गई, मैं तो आदि की रात हूं, शिकार खेलने की आखेट करने की इच्छा हो गई तो मैं तो जाऊंगा, बोले जाने की जरूरत ही नहीं है। वर्तन्ते बहुसो मृग मदजुसो मात्सर्य मोहादया, मोह मात्सर्य मद आदि मृग मेरे इस मन कांतार मन रूपी जंगल के अंदर ही रहते हैं। तो आपको खेलना हो शिकार तो इन्हीं का शिकार खेलो भाई, जितना खेलना हो। क्रोध रूपी बाघ है, मोह रूपी हाथी है, लोभ रूपी सिंह है, हिरण है, क्या नहीं है मेरे पास। मद मात्सर्य एक से एक पशु है यहां इस जंगल में, मेरे मन के मन रूपी जंगल में। बोलो कहां रहते हैं? काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य कहां रहते हैं? शरीर में रहते हैं कि मन में रहते हैं? शरीर में तो नहीं है ना, बढ़िया है। और जंगल शरीर में है और पशु रहते हैं मन में, कैसे है ना जंगल। प्राचीन काल में गांव के ग्रामीण लोग सफाई नहीं करते थे, काम करते थे तो पसीना बहुत आता था, है ना? और रोज नहाने का कहां हुआ, शैंपू कहां, शिकाकाई कहां, है ना? तो केस होता था, वो कंघी करने का ही फुर्सत नहीं उन लोगों को। और काम करते थे दिन भर, पसीना खूब आता था, और रोज रोज साबुन लगा के नहाने का उनको फुर्सत नहीं है, पानी इतना नहीं था, तो क्या होता था उस सिर में? जीव पैदा होते थे कि नहीं, जानवर पैदा होते थे हैं? तो इसी तरह ये मन में कितने पशु हैं, कितने जानवर हैं भाई, क्योंकि इसकी सफाई नहीं हुई है, सत्संग रूपी साबुन नहीं लगाया, भक्ति रूपी ज्ञान से नहीं धोया, तो मन क्या हो गया? जंगल हो गया। और सत्संग रूपी साबुन नहीं लगाए, वैराग्य रूपी साबुन नहीं लगाया, सत्संग रूपी ज्ञान से ज्ञानाग्नि से सुखाया नहीं, और भक्ति रूपी जल से उसको धोया नहीं, परिणाम क्या हुआ? इतने पशु पैदा हो गए जंगल मन रूपी हृदय में, काम क्रोध लोभ मोह कह तो देते हैं हम लोग, लेकिन जैसा कहते हैं वैसा फल दिखने में आता नहीं है। प्राय करके यह कहता है, नियमित सत्संग करने वाला व्यक्ति काम क्रोध लोभ मोह मद और मात्सर्य ये छह विकारों से बच जाता है, कहा तो यह जाता है, लेकिन अभी देखते हैं कि जो ज्यादा सत्संगी है उन्हीं में ज्यादा क्रोध दिखता है, गुस्सा दिखता है, भाई है एक हो क्या रहा है सत्संगियों में। फिर घर में जाओ, बहू जब सास गुस्सा करती है बहू से, ये नहीं किया वो नहीं किया वो नहीं किया, बहू कहती है मां इतनी सत्संग सुनती हो फिर क्रोध क्यों करती हो, तो उस समय वो जवाब देने लायक रहती है उसकी सास, बोलो नहीं रहती। होना ये चाहिए था, सत्संग हमेशा इन विकारों को नाश करने के लिए ही है, भक्ति भाव सत्संग इन विकारों को परास्त करने का है। भगवान शिव कहते हैं कि महाराज मुझे दो फायदा होगा, आप मेरे मन रूपी जंगल में निवास करोगे और इधर उधर नहीं जाओगे, तो आपको शिकार खेलने की आदत है, आप आधी किराते हैं, ये पशु मुझे हैरान कर रहे हैं, मेरी थोड़ी सी भजन का जो भाव है फसल, क्रोध आ जाता है, चौपट सब खत्म करके चला जाता है। ध्यान देना हो, सुबह उठकर तुम यदि जप करो, माला करते हो ना, जप करते हो ना, जब समाप्ति के बाद तुमने क्रोध किया तो वो क्रोध तुम्हारा जब खा के चला जाएगा। हाँ, ये सच्ची बात है। तुम जो पूजा पाठ सब कुछ करते हो और पूजा पाठ कर लेने के बाद यदि तुम में लोभ आ गया ना, वो जो लोभ है तुम्हारी साधना का जो फल फसल है वो सब चर के चला जाएगा। तुम्हारी साधना को खाकर ही तब शांत होते ही है तुम्हारी फसल, ये साधना जन्य फसल। तो शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि मेरी साधना जन्य जो फसल है, ज्ञान वैराग्य आदि, भक्ति ज्ञान वैराग्य आदि, ये सब रोज रोज ये जो पशु हैं खा जा रहे हैं। तो तुम यहां रहोगे तो तुम अपने आदत से मजबूर हो, शिकार खेलना ही है, ये दुष्ट जब आएंगे तुरंत इनका शिकार खेलना, वाह बड़ा आनंद रहेगा, मेरी फसल सुरक्षित रहेगी। मा गच्छ त्वम इतस्ततो, इसका मतलब यह है कि हम मुमुक्षुओं को, साधकों को भी भगवान शिव के चरण को छोड़कर इधर उधर नहीं भटकना चाहिए। और आप इधर उधर भटक गए कि बस इन पशुओं के द्वारा तुम आक्रांत हो जाओगे। हाँ, कर्म में मत लगो, मीमांसा के न्याय वैशेषिक इधर जाने की क्या जरूरत है, भगवान शिव के चरण में बैठ जाओ बस। नाद मान गच्छ त्वम इतस्ततः, अरे जिज्ञासु हो, मुमुक्षु हो, भगवान शिव की साधना आराधना भाव भक्ति ध्यान आदि को छोड़कर तुम इधर उधर मत मांगो। स्वरों का मेहन देता यज्ञ करने चले गए, घृताधारे पात्रम पात्राधारे घृतम, एक तार्किक था, एक तार्किक था, उसके कहा कि पैसा देकर कहा कि घी खरीद के लाओ बाजार से, तो वह एक बर्तन लेके चला गया बाजार में घी खरीदने, घी दुकानदार ने घी दे दिया बर्तन में। अब वो घी को देखकर फिर तर्क करने लगा, विचार करने लगा, ये जो घी है पात्र के आधार में टिका है कि घी के आधार में पात्र है, घृत आधारे पात्रम व पात्राधारे घृतम, बुद्धि में उसको तर्क आ गया, अब निर्णय करना चाहिए कि नहीं। उसने कहा अभी इसमें क्या ज्यादा बहस करना है, अभी देख लेते हैं, हमारे हाथ में ही है, घी भी मेरे हाथ में है, पात्र भी मेरे हाथ में, अभी देखते हैं। उसको ऐसा उल्टा तो सारे घी चला गया, तो घी गया, लेकिन उसको घी गया ये दुख नहीं हुआ है? उसको खुशी हुई, नाचने लगा वो, तो किस बात को लेकर नाचने लगा, एक बात, एक जो मन में तर्क और शंका उठी थी उसका समाधान हो गया, निश्चय हो गया, कैसे बोले, ये पक्का हो गया कि पात्राधारे घृतम, ये सिद्धांत पक्का हुआ, न कि घृताधारे पात्र, घी में पात्र टिका नहीं है, पात्र में घी टिका है, ये प्रयोग करके हमने देखा, अब पक्का हो गया, घी तो गया सब मिट्टी में। अरे भाई शिव के चरण छोड़कर इसके आधार में ये है कि, इसके आधार में ये है कि जगत कैसे उत्पन्न हुआ, प्रकृति से उत्पन्न हुआ कि, परमात्मा से उत्पन्न हुआ कि, आप में आप उत्पन्न हुआ कि, तीन गुणों से उत्पन्न हुआ कि, सत्वगुण से उत्पन्न हुआ कि, रजोगुण से, अरे ये सारा मत्थापच्ची क्यों करते हो, भगवान शिव के चरण में बैठ जाओ। माधावस्तम इतस्तत मा गच्छ त्वम इतस्तत गिरिशभो मय्येव वासं कुरु स्वामिन् आदि किरात मामक मनः कांतार सीमांतरे वर्तन्ते बहुशो मृगा मदजुषो उन्मत्त है मृगा, मेरे पे काम क्रोध लोभ मोह मद आदि इतने उन्मत्त हो गए कि हम इनको ठीक नहीं कर पा रहे और आप ही ठीक पा रहे, क्योंकि आप आदि किराती हैं, शिकारी हैं। हां तान हत्वा मृगया विनोद, और आपको तो बड़ा आनंद आएगा, शिकारी को शिकार खेलने मिल जाए तो बड़ा आनंद आता है, और आपके आनंद के साथ साथ हम भी आनंद का अनुभव करेंगे, आपको भी बड़ा आनंद आएगा शिकार खेलकर। हाँ, विनोद रुचिरा लाभ संप्राप्यति, आपको यहां रहकर कष्ट नहीं होगा, हाँ शिकार खेलने का भरपूर आनंद होगा, कहीं जाना भी नहीं पड़े, जंगल में भटकना भी नहीं, यहीं बैठे बैठे सारा आनंद मिल जाएगा। करलग्न मृग करिंद्र भंगो घनसार्दुला विखंडनोस्त जंतु गिरीशो विशदाकृतिश्च चेत कुहरे पंच मुखोस्ति मे कुतो भी। पंचमुख कुहरा, ये हमारा जिसको हृदय बोलते हैं ना, पंच सुशीर वाला है, पंच छिद्र वाला है, ये हृदय गोल जो पिंड है, हृदय पिंड जीवात्मा का, वह पंचमुख आत्मा का है, पंच सुशीर पांच छिद्र है उसमें। कुहरे हृदय चेतो कुहरे, चित्त रूपी जो गुफा है जो पांच छिद्रों से बना हुआ है, और उस गुफा में गिरिशा विशदा कृतिश्च हे गिरिशा, पहाड़ में रहने वाले विशदा कृतिश्च, आप व्यापक हैं, व्यापक होने के बावजूद भी आप चेता कुहरे चित्त रूपी हृदय में निवास करो, क्योंकि अब बाहर निवास करने का कोई मतलब ही नहीं है। कर लग्न मृगा, एक मृगा भगवान शिव के हाथ में हमेशा रहता है, मृगधरा, भगवान शिव को मृगधरा कहते हैं, मृगा अति चंचलता का प्रतीक है, अस्थिरता का प्रतीक है, और वह भगवान शिव ने अपने उंगलियों के बीच में धारण किया का मतलब है कि मन शिव से ही नियंत्रित हो सकता है, अन्यथा वह नियंत्रित नहीं हो सकता। शिव के हाथ में जाने पर ही स्थिर होगा, शिव के शरण में जाने पर ही स्थिर होगा, शिव के आश्रय में रहने पर ही स्थिर होगा, अन्यथा ये मन रूपी मृग स्थिर नहीं हो सकता है। भगवान शिव ने मृगों को धारण किया इस प्रतीक से कि मन ही मृगा है, मन को उन्होंने बस में किया है, तब से लेकर उनका एक नाम पड़ा करलग्न मृगा। करिंद्र भंगो, करिंद्र माने गजासुर, करी माने गज हाथी, एक था बड़ा भारी असुर, गजासुर था उसका नाम, हाथी का रूप धारण करके आया हुआ असुर, बड़ा आतंक मचाया, किसी से मारा नहीं गया, वो उसको वरदान ही यही था उस गजासुर को, और भगवान शिव के अलावा और कोई मार ही नहीं सकता था, तो सभी प्रार्थना करने के लगे, भगवान इस गजासुर ने तीनों लोक में आतंक मचा रखा है, आप ही इसका निदान कर सकते हैं, इसको मार सकते हैं। भगवान शिव ने उस गजासुर को मारा और उन्होंने विचार किया कि ले चलो, हमारा कपड़ा नहीं था, कपड़ा बढ़िया नया कपड़ा मिल गया, तुरंत परशु मृगवरा है ना, भगवान शिव के हाथ में परशु रहता है, उन्होंने सब उसके चमड़ी उतार ली, बड़ा भारी कपड़ा हो गया, उन्होंने लपेट लिया और चल पड़े भाई। तब से उनका नाम क्या हुआ, दंती त्वक, दंती त्वक त्वचा, दंती का जो त्वचा है, हाथी के जो त्वचा है, चमड़ी है, दंती त्वक कृतम कृतांबरम, कृतांबर वस्त्र, हाथी की चमड़ी को जिसने बढ़िया वस्त्र बना लिया, ద్వంతీత్వకృతాంబరం వరధరి త్రైలోక్య సారే హరే. ఔర్ దూసరా అసుర హువా హై వహ వ్యాఘ్రాసుర్, ఉస్కా నామ్ హై వ్యాఘ్రాసుర్. వహ బాఘ కా రూప్ ధారణ కర్కే వో అసుర్ చారో తరఫ్ తీనో లోక్ పర్ ఆతంక మచ్చా రఖా థా. ఉస్కో భీ ఔర్ కోయి నహీ మార్ పా రహా థా, తో వహీ భగవాన్ శివ నే మారా. ఔర్ ఉస్కీ భీ హాథీ కీ ఛాలా జో చమడీ హై గర్మీ కే లియే డ్రెస్ హో గయా, బాకీ జో ఛాలా హై చమడీ హై వో ఠండియో కే లియే బఢియా స్వైటర్ హో గయా నా, లపేట్ లియా. ఉస్మే బాల్ జ్యాదా హోతే హై నా బాకీ మే, తో దో జోడీ కపడే రఖ లియే ఉన్హోనే దో కపడే, ఏక సర్దియో మే పహన్నే కే లియే హిమాల్ కీ తరఫ్, ఏక గర్మీ ఉలన్ కీ కపడే, ఔర్ ఏక ఇధర్ బొంబై ఆనా పడే తో యే ఠండే కపడే లేకే ఆ గయే. తో యే దంతిక్తక్ ఔర్ బాగంబర్ దోనో అసురో కో మార్కర్ ఉన్కే యే దిఖానా కి యే దేఖ్ లో ఈ దుష్టో కో మైనే మారా, యే దిఖానే కే లియే ఉన్కే నిశాన్ కో ఉన్హోనే కపడే కే రూప్ మే ధారణ కియా హై. కర లగ్న మృగ కరీంద్ర భంగు ఘనసార్దులా తిభిఖండనోస్తు జంతు అస్త జంతు. ఇత్నే నహీ, ఛోటే మోటే జంతు ఆది తో జబ్ ఆప్కీ ఇచ్ఛా హోతీ హై సమాధి మే జానే కీ, తబ్ సారే సంకల్ప ఏక కర్ దేతే హై తో సబ్ పృథ్వీ అస్త జంతు హో జాతా హై. దుష్ట జంతు తో అస్త హోతే హీ హోతే, సభీ జంతు అస్త హో జాతే హై. పృథ్వీ కైసే హో గయీ మహాప్రళయ మే అస్త జంతు, కోయి జీవ రహా నహీ, మహాప్రళయ హో గయా. తబ్ ఫిర్ ఉస్ అవస్థా మే ఆప్ క్యా కహతే హై, గిరిశో విశదా కృతిష్ఠ చేతా కుహరే. అబ్ ఆప్కో తో కోయి కామ్ తో హై నహీ, ఇస్లియే మహారాజ్ చేతా కుహరే పంచముఖో అస్తి, మేరే పాస్ ఏక్ బహుత్ బడియా గుఫా హై పాంచ ఛిద్ర వాలా చేతా కుహర, యహీ ఆకర్ బైఠ జాయియే, జబ్ దుబారే అగాసుర్ పైదా హోగా, అగాసుర్ నహీ గజాసుర్ పైదా హోగా, తబ్ ఫిర్ మార్నే కే లియే ఆనా, ఫిర్ వహ వ్యాఘ్రాసుర్ పైదా హోగా తో మార్నే ఆనా, మృగ అతి చంచల్ కర్కే ఉత్పాత్ మచానే లగేగా తో ఉస్కో పకడ్నే ఆనా. అబ్ తబ్ తక్ తో ఫిర్ హమ్ మనా కుహరే గుఫా మే బైఠ కర్ ఖూబ్ ధ్యాన్ కర్తే రహియే, యే మన్ ఆప్కే లియే హై అర్పణ కర్ దియా మైనే, బఢియా గుఫా బనా కే రఖా హై. ఔర్ క్యా కహెంగే కల్. ఓం పూర్ణమదః పూర్ణమిదం పూర్ణాత్ పూర్ణముదచ్యతే పూర్ణస్య పూర్ణమాదాయ పూర్ణమేవావశిష్యతే. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. శంకరం శంకరాచార్యం కేశవం బాదరాయణం సూత్రభాష్యకృతౌ వందే భగవంతౌ పునః పునః. ఈశ్వరో గురురాత్మేతి మూర్తిభేద విభాగినే వ్యోమవద్ వ్యాప్త దేహాయ దక్షిణామూర్తయే నమః. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. ఓం.